नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का उल्लेख करते हुए कहा है कि रुपए का मूल्य बाजार से प्रेरित है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के व्यापक आर्थिक आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं। लोकसभा में आज वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत संकेतक मजबूत हैं। निर्मला सीतारामन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण दुनिया भर की मुद्राओं में अस्थिरता देखी जा रही है। उन्होंने प्रमुख आर्थिक संकेतकों का उल्लेख करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति कम हो गई है, जीडीपी वृद्धि दर 7% से ऊपर बनी हुई है और चालू खाता घाटा 1% से कम है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता दुनिया भर की मुद्राओं को प्रभावित कर रही है और विनिमय दर के दबाव का सामना करने वाला भारत अकेला देश नहीं है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई में 5,36,00,000 की राशि से बनने वाले विकास खंड अधिकारी कार्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस भवन के बनने से विकास खंड कोटखाई में कार्यरत कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी और विकास कार्यों को अधिक गति मिलेगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में ये कार्य एक मील का पत्थर साबित होगा। रोहित ठाकुर ने इस भवन के निर्माण से जुड़े सभी अधिकारियों व निर्माणकर्ताओं को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 पहली अप्रैल से शुरू होगी। ये स्वतंत्रता के बाद की 8वीं और इस श्रृंखला की 16वीं जनगणना होगी। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में घर घर की सूची बनाना और स्वगणना की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका संचालन अलग अलग होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वगणना पूरी करने के बाद 30 सितंबर तक 30 दिनों की अवधि में घरों की सूची तैयार की जाएगी।
गणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्था में पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है। जनगणना एक वृहद कार्य है। इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, संघ शासित प्रदेशों के स्तर पे विशद तैयारी चलती है। यह जनगणना 2 चरणों में संपन्न होती है और इस बार आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है।
मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि स्वगणना पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। पहले प्रश्न पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं और दूसरे चरण के प्रश्न उचित समय पर प्रकाशित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया है कि 31 दिसंबर 2025 तक कांगड़ा जिला में 1,04,212 किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खेती और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण लिया गया है। राज्यसभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी के सवाल के जवाब में आज संसद में उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब तक कांगड़ा जिला में 1,241 करोड़ रुपए का ऋण लिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए 3 लाख और पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के लिए 2 लाख तक के अल्पकालीन ऋण पर ब्याज पर अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी विभिन्न लंबित वित्तीय देनदारियों को अदा न करने के विरोध में आज शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने कहा कि सुक्खू सरकार ने पिछले 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के साथ सौतेला व्यवहार कर ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 13% डीए, 44 महीने का एरियर और चिकित्सा बिलों की अदायगी भी अभी तक नहीं की गई है। पेंशनरों ने कहा कि अगर समय रहते उनके हक नहीं दिए गए तो वे सुक्खू सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर देंगे।
ये जो 1-1 लाख से लेकर जनवरी 22 तक का जो एरियर लाखों रुपया था वो मिलना था, वो भी नहीं मिला। महंगाई भत्ता नहीं मिला, हम उसी में जूझ रहे हैं। जो महंगाई बढ़ती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पैमाना है, उस हिसाब से महंगाई बढ़ाते हैं, वो नहीं बढ़ी है। और जो बच्चे हैं सारे हाई एजुकेटेड है, वो सब बेरोजगार है। ये रोजगार देने में सरकार असमर्थ है। वार्ता की जीत जाए, जो भी टेबल नेगोशिएशन में होगा वो सबको मंजूर हो।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।